வந்தே சச்சிதானந்தம், வந்தே சச்சிதானந்தம், வந்தே போகிலாஞ்சித் யோகிவாஞ்சித் சரமபதம் வந்தே. பரம புராண பராபரம் பூர்ணம் கண்டு பராபரம் த்ரிசங்க சுத்தம் சகபுத்த துர்வேதம் வந்தே வந்தே சச்சிதானந்தம் வந்தே வந்தே.
லோக் தர்ம சேவா ஆரம்ப கர்ணி சி பூர்வ உன்கி மாதா உன்கி சஹாயிகா தீ. உதர் இஸ் பீச் एलिजाबेथ और जकरियास का पुत्र योहन ईश्वर की आज्ञा से मसीह का अग्रदूत बन उनका रास्ता तैयार करने निकल पड़ा. योहन रेगिस्तान की पथरीली जमीन से निकल अब इसराइल में था. योहन बहुत ही कृपालु थे मगर कठोर हृदय लोभियों व घमंडियों के लिए आतंकित करने वाले. योहन ऊंट की चमड़ी के वस्त्र पहनते और चमड़े का कमरबंद धारण किए नंगे पैर घूमते थे.
सांप के बच्चों, किसने तुम्हें आगामी कोप से भागने के लिए सचेत किया? पश्चाताप के उचित फल उत्पन्न करो और ये ना सोचा करो हम इब्राहिम की संतान हैं. मैं तुम लोगों से कहता हूं, ईश्वर इन पत्थरों से इब्राहिम के लिए संतान उत्पन्न कर सकते हैं. और अब पेड़ों की जड़ में कुलाड़ा लग चुका है. जो पेड़ अच्छा फल नहीं देता वो काटा और आग में झोंक दिया जाएगा.
स्वामी योहन, तो हमें क्या करना चाहिए?
जिसके पास दो कुर्ते हो वो एक उसे दे जिसके पास नहीं है, और जिसके पास भोजन है वो भी ऐसा ही करे.
गुरुवर, गुरुवर, मैं एक नाकेदार हूँ, मुझे क्या करना चाहिए?
जितना तुम्हारे लिए नियत है उससे अधिक मत मांगो.
गुरुवर, हम तो सैनिक है, हमें क्या करना चाहिए?
न किसी पर अत्याचार करो, न ही झूठा दोष लगाओ. और हाँ, ये भी याद रखो,
लगता है ये तो वही मसीह है जिसकी हम प्रतीक्षा कर रहे थे.
ये कैसे हो सकता है? मसीह तो यहूदियों के राजा होंगे, वे तो हमें इन रोमियों की गुलामी से मुक्त कराएंगे. ये मसीह कैसे हो सकते हैं? इनके पास न तो सेना है और न शस्त्र. वे किसी राजमहल में नहीं रहते हैं और न उनकी वेशभूषा राजसी है.
मैं मसीह नहीं हूँ, मैं तो जल से प्रभु के नाम पर आशीर्वाद देकर तुम्हें पाप मुक्त करता हूँ. परंतु एक जो तुम्हारे बीच आने वाले हैं वे मुझसे भी अधिक शक्तिशाली है. मैं तो उनके जूते का फीता खोलने लायक भी नहीं हूं. वे तो तुम लोगों को पवित्र आत्मा और अग्नि से पाप मुक्ति का बपतिस्मा देंगे. वे हाथ में सूप ले चुके हैं जिससे वे अपना खलिहान ओसा कर साफ करें, अपना गेहूं अपने बखार में जमा करें. वे भूसी को न बुझने वाली आग में जला देंगे.
इस तरह प्रभु ईसा मसीह का अग्रदूत योहन लोगों को मसीह का स्वागत करने के लिए तैयार कर रहा था कि वे दुष्कर्म त्याग दें, क्योंकि अपने पापों के लिए वे स्वयं जिम्मेदार हैं. योहन ने अपने लोगों की चुनौती देते हुए कहा कि अपने दुर्भाग्य के लिए दूसरों पर दोष न मढ़ें, बल्कि विनम्रता, सच्चाई, अहिंसा अधार्मिकता का दामन थामे और सजीवन जी. सूरज की एक नन्ही सी किरण मानव प्राणियों में जीवन का संचार कर देती है। जल की एक बूंद रेगिस्तान में भटकते राही के लिए तृप्तिदायक है। ऐसे ही रोमन साम्राज्य के अत्याचारों से पीड़ित लोग मसीह के आने की खबर सुनने यर्दन नदी के तट पर यूहन के पास आते थे। वे सोचते थे कि मसीह आकर उन्हें मुक्त कराएंगे। जब मसीह आएंगे तो पृथ्वी पर मौजूद सारे सम्राटों का नाश हो जाएगा। सामाजिक अन्याय से लोग तंग आ चुके थे। नबियों की बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता था। शास्त्री व महायाजक अपने स्वार्थों की पूर्ति में लगे थे। ऐसे में यूहन की बातें उन्हें तसल्ली देती और वे अपना जीवन सुधारने, पाप कर्म त्यागने की बातें पूछते।
पश्चाताप करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। जिससे नबी ईसायाह की ये वाणी पूरी हो जाए, निर्जन प्रदेश में पुकारने वालों की आवाज, प्रभु का मार्ग तैयार करो, उनके पथ सीधे कर दो। हर एक घाटी भर दी जाएगी, हर एक पहाड़ और पहाड़ी समतल कर दी जाएगी, और सब शरीरधारी ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन करेंगे। देखो, ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हरता है, ये वही है जिनके विषय में मैंने कहा था, ईसा, मुझे तो आपसे शुद्धि लेने की जरूरत है, और आप मेरे पास आए हैं।
अभी ऐसा ही होने दीजिए, ये हमारे लिए उचित है कि हम इस तरह धर्म विधि पूरी करें।
ठीक है, आइए।
तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझ पर अत्यंत प्रसन्न हूं।
ईसा वास्तव में ईश्वर के पुत्र थे, जिसे मरियम ने शारीरिक जीवन प्रदान किया था और यूसुफ ने संरक्षण दिया। 30 वर्ष की उम्र में यूहन से बपतिस्मा अर्थात जल से शुद्धि लेने के बाद शुरू होता है ईसा का अभियान, जिसके लिए वे आए थे। प्रभु का आत्मा उन पर विराजमान था। उनके संपूर्ण जीवन तथा हर एक कार्य में वे प्रभु के साथ थे। फिर भी इसके लिए पहले कि वे ईश्वर का संदेश लोगों तक पहुंचाते, प्रभु का आत्मा उन्हें रेगिस्तान ले गया, जहां उन्हें एकांत में उन चीजों का सामना करना था, अपने मस्तिष्क को शुद्ध व अटल बनाना था, ताकि वे लोगों की आवश्यकताओं व आशाओं को पूरा करें। ईसा को यहाँ निर्जन प्रदेश में ईश्वर के प्रति प्यार व समझ से काम लेना था, साथ ही ये उनके नवीन जीवन की नई चुनौतियां भी था। यहाँ इस रेगिस्तान में ईसा ने 40 दिन का उपवास रख रात दिन प्रभु से प्रार्थना करते रहे। एकांतवास जीवन से भागने का नहीं, वरन जीवन में आने वाली परिस्थितियों का सामना करने के लिए हृदय की कठोरता व मन की अटलता का निर्माण करना है, और वही ईसा कर रहे थे।